Az ilyen dolgokat tehetünk, megköszönöm az ember, jól megpróbálom. Az sem Bhagavan Sri Krishna, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, उनके अवतार का कारण क्या है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में अवतरित हुए थे तो उस समय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश प्रदान किया था और अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने सारी मानव जाति के लिए ये उपदेश प्रदान किया था। वस्तुतः भगवत गीता के उपदेशों में सारे जगत का कल्याण निहित है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के सार स्वरूप कहते हैं कि मन्मना भव मत भक्तो मध्याजी मंग नमस्कुरु मामे वे सति सत्यं ते प्रतिदान प्रयोजन। कहते हैं कि हे अर्जुन, सदा सर्वदा मन्मना अर्थात तुम अपने मन में मेरे विषय में चिंता कर, मेरा चिंतन कर, मेरा स्मरण कर, तुम्हारे मन को मुझे दे दो। अर्थात हमारा मन इस भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में भिन्न भिन्न वस्तु या भिन्न भिन्न बातों पर लगा रहता है, किंतु भगवान में मन नहीं लगता है। या कभी हम भगवान का स्मरण करते भी हैं तो फिर एक मिनट के बाद फिर मन इधर उधर चला जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदा सर्वदा मेरा ही चिंतन करो, भव मद भक्त मेरा भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा कर, मांग नमस्कुरु और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि अंत में तुम मुझको ही प्राप्त हो। पुनः कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। कहते हैं तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, और तुम अगर यदि सोचते हो कि इसमें तुम अपने धर्म का परित्याग करोगे उसमें पाप लगेगा तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सारे देवताओं के देवता है और उनकी पूजा से सबकी पूजा भी हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, देवर्ष भूतात्मनंग तृणंग न तो किंकराय ऋणं स राजा सर्वात्मनाया स्मरणं शरण्य गतो मुकुंदं परिहृत कल्पं। यहां तक कि जब व्यक्ति जन्म लेता है इस भौतिक संसार में तो देवताओं के पास, मुनि ऋषियों के पास, पिता माता के पास, समाज के पास ऋणी हो जाता है, क्योंकि मुनि ऋषियों का उपदेश, पिता माता का लालन पालन और समाज का स्नेह और सुविधा, ये सबको व्यक्ति उपभोग करता है, इसलिए इन सब के प्रति ऋणी हो जाता है। किंतु सर्वात्मना शरणं शरण्य, किंतु जो सर्वात्मना है अर्थात जो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, उसी भगवान के शरण में जाने, क्योंकि वही भगवान अपने धाम में लीला विलास कर रहे हैं और एक समय में सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए और हर अणु परमाणु में भी व्याप्त, ये भगवान की सर्वव्यापकता है। तो भगवान कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो भगवान के शरण में जाता है गतो मुकुंदं परिहृत कल्पं, तो समस्त प्रकार के ऋण से वो मुक्त हो जाता है। जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है वो देवऋण, ऋषि ऋण, पितृमात्र ऋण, समाज का ऋण सबसे मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यदि कोई उनके शरण में जाए, उनका भक्त बने, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम अपने पापों के कर्म के फल स्वरूप दुख भोग करते हैं, और यदि हम लोगों ने कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो उसके परिणाम स्वरूप सुख भोग करते हैं। तो ये जो पाप कर्म है जिसके कारण हम दुख भोग कर रहे हैं वो सब भगवान समाप्त कर देते हैं, पापों से व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, इसलिए व्यक्ति को और दुख भोग करना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का जो उपदेश भगवान कृष्ण का, तो इसको भगवान कृष्ण ने सारे जगत के कल्याण के लिए उपदेश प्रदान किया, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग कर चले गए अपने स्वधाम में, वहां पर गोलोक वृंदावन में भगवान का जो नित्य धाम है वो है गोलोक वृंदावन। इस भौतिक सृष्टि को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक है भौतिक सृष्टि, एक है आध्यात्मिक सृष्टि। इस भौतिक सृष्टि समग्र सृष्टि के एक चतुर्थांश मात्र है, और तीन चतुर्थांश भाग ये आध्यात्मिक सृष्टि या चिन्मय सृष्टि। और इस आध्यात्मिक सृष्टि में भगवान के अनंत धाम है, भगवान के जितने अवतार हैं उनके सब अपने अपने धाम हैं, वैकुंठ धाम। और भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य निवास करते हैं, और जब इस भौतिक संसार में वो अवतरित होते हैं तो उनका धाम इस भौतिक जगत में आता अवतरण करता है। इसलिए भौतिक जगत का जो वृंदावन धाम है ये भौतिक जगत का अंश नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का अंश, इसलिए चिन्मय धाम। तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं अपने धाम, अपने परिकर पार्षद वर्गों को साथ में लेकर आते हैं लीला करने के लिए इस भौतिक सृष्टि में। अतः हम देखते हैं कि नंद यशोदा और जितने गोपाल बालक हैं और गोपियां हैं, नित्य भगवान की नित्य सखियां हैं, ये सब गोलोक वृंदावन से भगवान के साथ आई थी, आए थे यहां लीला करने। और कुछ भक्त लोग जो भगवान कृष्ण के प्रति वास्तव माधुर्य दास्य सख्य भाव से उनके प्रति समर्पित थे और अपनी भक्ति में वो सिद्धि को प्राप्त हुए थे, ये लोग भी वृंदावन में भगवान की लीला में वे लोग अंशग्रहण किए थे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो नित्य गोलोक धाम में विहार करते हैं, तो ये धराधाम को त्याग कर अपने धाम में चले जाने के पश्चात सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैंने संसार के कल्याण के लिए गीता में जो उपदेश प्रदान किया है उन उपदेशों का पालन करना ये संसारी जीवों के लिए संभव नहीं है। जब तक कोई आदर्श प्रस्तुत न करे इन उपदेशों को पालन करने में, तब तक ये संसारी जीव किससे शिक्षा ग्रहण करे, किससे सीखेंगे। अतः भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि संसार के लोगों को और विशेष रूप से कलयुग के लोगों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए, मेरे प्रति समर्पण के भाव की शिक्षा देने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा इस कलयुग। आपने आचरित धर्म सिखा लो सवाल, भगवान कहते हैं कि मैं जब इस कलयुग में और एक बार अवतरित होऊंगा तब स्वयं अपने उपदेशों का आचरण करूंगा और दूसरों को मैं सिखाऊंगा, शिक्षा प्रदान करूंगा। तो दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान को भक्त के रूप में आना पड़ा। जो कृष्ण स्वयं भगवान है वो स्वयं अपने भक्त के रूप में अवतरित हो रहे हैं, और उनके अवतारों के अवतार का ऐसे बाह्य कारण तीन प्रकार के कारण है। प्रथम कारण है भगवान श्री कृष्ण का कि वे युग धर्म प्रवर्तन करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक युग में एक एक युग धर्म होता है। हम कल बता रहे थे सुबह के सत्र में कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि, ये चार युगों में चार प्रकार के युग धर्म हैं। इस तरह सत्य युग में युग धर्म था भगवान का ध्यान, और त्रेता युग में युग धर्म था यज्ञ, द्वापर में अर्चना और कलि में हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान श्री कृष्ण एक तो इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में तो युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए आए, हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए आए और उसके साथ साथ भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए, भक्ति शिक्षा। तो स्वयं भक्त बनकर, स्वयं भगवान अपना भक्त बनकर भक्ति की शिक्षा लोगों को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और तीसरा कारण था जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, स्वयं सोचते हैं कि युग धर्म प्रवर्तन हय अंश है थे आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दिते। ये बंगला भाषा में चैतन्य चरितमृत में ये लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ये युग धर्म का प्रवर्तन मेरा कोई भी अवतार कर सकता है। हर युग में एक एक अवतार आते हैं युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए। भगवान कृष्ण हर युग में नहीं आते या हर द्वापर में नहीं आते, इसके संबंध में हम बाद में कहेंगे। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि इस युग धर्म का प्रवर्तन मेरा कोई भी अंश कोई भी अवतार कर सकता है, किंतु आमा बिना अन्न नारे व्रज प्रेम दे, किंतु मेरे बिना अन्य कोई भी अवतार इस व्रज प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो अवतार चैतन्य अवतार, ये चैतन्य अवतार के ये मुख्य कारण है। बाह्य कारणों में से ये मुख्य कारण है कि भगवान श्री कृष्ण एक तो युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए अवतरित हुए और उसके साथ साथ भक्ति की शिक्षा देने के लिए, किंतु जो महत्वपूर्ण कारण है वो व्रत प्रेम प्रदान करने के लिए। अनर्पित करिंचिरा करुणया अवसन्न कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसम सौभक्त प्रिया हरि पुरत सुंदर द्युति कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनन्न। अनर्पित करिंचिरा करुणया अवसन्न कलो, इस ब्रज प्रेम को किसी अवतार ने कभी प्रदान नहीं किया गया। जिसको प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक अवतरित हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और नाम संकीर्तन के माध्यम से ये ब्रज प्रेम कृष्ण प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। अतः हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए प्रचार कर रहे थे, जा रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से इस हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण मात्र करता था तो तुरंत वो कृष्ण प्रेम में उद्भूत हो जाता था, कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। और यही चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है और इस प्रकार उन्होंने समग्र भारतवर्ष के लोगों को वैष्णव बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण का प्रेम प्रदान किया, ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवदान है। ये यद्यपि ये सब तीन बाह्य कारण है, इसके कुछ अंतरंग कारण भी हैं चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने। अंतरंग कारणों में से जो मुख्य तीन कारण है उनमें से श्री राधया प्रणय महिमा कितृ सोवान है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो अत्यंत प्रियतमा है वो श्रीमती राधारानी, जो उनकी नित्य प्रेयसी और कृष्ण की अत्यंत अनुगामी। तो श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, श्रीमती राधारानी का जो प्रेम है, तो उसकी महिमा क्या है भगवान कृष्ण उसको जानना चाह रहे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण विषय विग्रह है और श्रीमती राधारानी प्रेम का आश्रय है, तो जिनके प्रति प्रेम किया जाता है और जो प्रेम करता है, तो जो प्रेम करता है उसके मन में क्या अनुभव है, जिसके प्रति प्रेम किया जाता है वो कैसे समझ सकता है, क्योंकि वो विषय और प्रेम का आश्रय है वो व्यक्ति जो प्रेम को प्रकट कर रहा है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को ये अनुभव नहीं हुआ था कि राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ये सोच रहे थे कि मैं कैसे इसको जानू, क्योंकि मैं विषय विग्रह हूं और जब तक मैं आश्रय रूप ग्रहण नहीं करता तो आश्रय जाती और प्रेम का सुख का अनुभव मैं नहीं करता। तो ये कारण भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने। दूसरा कारण हुआ कि श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का जो अनुभव कर रहे थे, श्रीराधया प्रणय महिमा कितृ सोवा नैवा शास्त्रोजेना ऋत मधुरिमा कितृ सोवा मदे। तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर है, अत्यंत आकर्षक है, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को देख नहीं सकते। जिस प्रकार हम कितना सुंदर हैं, हम अपने को देख नहीं सकते, दूसरे को देख सकते हैं या हमारे सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं। तो एक दिन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मणिमय स्तंभ में अपने रूप का प्रतिफलन देख रहे हैं और उस रूप का प्रतिफलन देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ये रूप किसका है, ये इतना सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा, तो ये सुंदर रूप किसका है। ये सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः सोचते हैं कि क्या ये रूप मेरा ही है। अयम अहम अपि हंता प्रक्षेण लुब्ध चेता। तो इस प्रकार सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैं इस रूप, मेरा ये माधुर्य रूप, मुझे ये पता नहीं है कि मेरा इतना माधुर्य है। तो ये राधा रानी मेरे जो माधुर्य का अनुभव करती है तो उसका अनुभव मुझे कैसे, इसलिए लुप्त देता भगवान श्री कृष्ण के मन में ये लोभ उत्पन्न हो गया कि मैं स्वयं अपने माधुर्य का कैसे आस्वादन करूं। और तीसरा कारण है सक्षम दर्शन मदन अनुभव। तो राधा रानी मेरे प्रेम से जो सुख का अनुभव करती है, उस सुख का अनुभव मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंता करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब तक मैं राधा रानी का रूप और राधा रानी का भाव अंगीकार नहीं करता हूं, तब तक मुझे इस तीनों का अनुभव नहीं हो सकता। ये सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण, यद्यपि वो श्याम रूप है भगवान श्री कृष्ण, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधारानी का रूप ग्रहण किया। श्रीमती राधारानी सप्त कंचन गौरांगी, और भगवान श्री कृष्ण अब हुए सप्त कंचन गौरांगी। तो राधारानी के वर्ण धारण किए भगवान कृष्ण, गौरवर्ण हुए, श्याम वर्ण से गौरवर्ण हुए, और राधारानी के भाव को भी उन्होंने अंगीकार किया। श्रीमती राधारानी के भाव कृष्ण के प्रति जिस प्रकार का प्रेम है उसी को उन्होंने अंगीकार किया। अतः हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे तो कृष्ण प्रेम में विवल हो जाते थे, क्योंकि राधा रानी के भाव में कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। कहां कृष्ण, कहां जाऊं, कहां पाऊं मुरली भजन, मैं कहां जाऊं, कहां भगवान कृष्ण को पाऊं, इस प्रकार कृष्ण का विरह अनुभव करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। यही राधा रानी का भाव, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भाव को सब लोग समझ नहीं सकते। कभी कभी लोग चैतन्य महाप्रभु को यही जानते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं या बहुत बड़े महात्मा, किंतु वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे इसके संबंध में बहुत कम लोगों को पता है। यद्यपि ये शास्त्रों में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। ये कृष्ण यामल तंत्र में ये वर्णन है कि कलौ संकीर्तनागमे हरिष्यामि सत्यसुतः। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कलयुग में जब संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ होगा उस समय मैं सत्यसुत के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा, अवतरित हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम था सत्यदेवी। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की माता यशोदा, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की माता सत्य माता थी। वस्तुतः सत्य माता में देवकी और यशोदा के भाव। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार सत्य माता के गर्भ से अवतरित हुए। उसी प्रकार वायु पुराण में भी कहा गया है कि पुण्य क्षेत्र नवद्वीपे भविष्यामि सत्यसुतः, कि पुण्य क्षेत्र नवद्वीप धाम में मैं सत्यसुत के रूप में, सत्य के पुत्र के रूप में अवतरित हूं। ब्रह्मयान तंत्र में भी वर्णन है, अथावाहं धराधामे भूत्वा मद्भक्त रूप दृ, कि उसमें कहा गया है कि इस धराधाम में मैं अपना भक्त बनकर अवतरित हूं। हरि भक्ति ग्रह यान कलौ पाप हतान मरा, कलयुग के लोगों का पाप नष्ट करने के लिए मैं भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा और भक्ति का प्रचार करूंगा। ये ब्रह्मयामल तंत्र में वर्णन किया गया। महाभारत में भी चैतन्य महाप्रभु के अवतार के संबंध में कुछ संकेत है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांग, संन्यास समसंत निष्ठा शांति परायण। तो महाभारत में भी बताया गया है कि किस प्रकार भगवान सुवर्ण वर्ण हेमांग ये सुवर्ण वर्ण धारण करेंगे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण है किंतु सुवर्ण वर्ण गौर वर्ण धारण करते हैं और संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था प्रचार के लिए, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए। तो संन्यास कृष्ण संतो निष्ठा संति परायण। तो इस प्रकार उपपुराण में भी वर्णन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रील व्यासदेव को कहते हैं कि अथ क्वचित् अहं ब्रह्म भूत्वा मद्भक्त रूपः, कहते हैं कि हे ब्राह्मण मैं कभी कभी मेरे भक्त के रूप में अवतरित होता और इस प्रकार हरि भक्ति का प्रचार करता। हरि भक्ति ग्रहाया तो हरि भक्ति का प्रचार करता। तो इस प्रकार कई पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के अवतार, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में वर्णन होने का संकेत दिया गया है और एक स्पष्ट प्रमाण वेदों में प्राप्त होता है। ये अथर्ववेद में एक स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है जिसको मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूं। ये पिपलवाल ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं, भगवान कलौ पापासन्न प्रजा कथं मुच्यन इति, कहते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, ये कलयुग में जो पापाच्छन्न प्रजाएं हैं अर्थात जो पापी जन है कलयुग, उन लोगों का मोचन कैसे होगा, ये लोग पापों से कैसे मुक्त होंगे, इसका उपाय क्या है? को बा देवता, और कलयुग में कौन से देवता पूज्य है, किसकी पूजा करनी चाहिए? को बा मंत्र हुई थी, और कलयुग में कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो सकता। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ब्रह्मा जी देते हैं अथर्ववेद में। सहोवाच रहस्यं ते वदिष्यामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पिप्पलाल, अब मैं तुम्हें इस रहस्य के संबंध में बता रहा हूं। जानना भी तीरे, जानना भी अर्थात गंगा, गंगा नदी के तट पर जानना भी तीरे नवद्वीप, नवद्वीप धाम गोलक्ष धाम में गोविंदा जी भूज। तो जाह्नवी के तट पर जो नवद्वीप धाम है जो गोलक के समान है, क्योंकि ये जो नवद्वीप धाम है ये नित्य गोलक वृंदावन का एक प्रकोष्ठ है, एक अंश है। गोलक वृंदावन में दो भाग है, जहां एक भाग में भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्य लीला करते हैं और दूसरे भाग में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, इसलिए गोलकाक्ष कहा गया है नवद्वीप धाम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नवद्वीप गोलकाक्ष धामनी गोविंद द्विभुज। तो द्विभुज गोविंद भगवान श्री कृष्ण जो दो हाथ वाले हैं, दो भुज वाले हैं, तो वही भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मना महापुरुष जो समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और महापुरुष महात्मा महायोगी वही भगवान गौर रूप में अवतरित हुए। द्विविध गौर सर्वात्मा महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्स्वरूप भक्ति लोके काश्य। तो इस प्रकार वही भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में अवतरित होकर इस नवद्वीप धाम में जो गंगा जी के तट पर है समग्र लोक में भक्ति का प्रचार करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी का उत्तर अथर्ववेद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये कोई कल्पना नहीं, ये शास्त्रों में इसका वर्णन है, क्योंकि ये प्रथम अवतार था, गुप्त अवतार था। क्योंकि यदि इन बातों का पता पहले चल जाता तो शास्त्रों में लिखित है तो लोग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पूजा भगवान के रूप में करते, और यदि सब लोग भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त की लीला नहीं कर सकते, इसलिए इस अवतार को गुप्त अवतार कहा गया। गुप्त रूप में भगवान आए अपने भक्त के रूप में भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो कभी कभी चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि कभी कोई उनको कृष्ण के रूप में संबोधित कर देता या भगवान के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु अपने कामों को बंद कर देते, ये सुनना नहीं चाहते थे कि वो भगवान है। आजकल तो लोग स्वयं भगवान नहीं है किंतु अपने को भगवान घोषित कर देते, और जो स्वयं भगवान है वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं भगवान नहीं, मैं भगवान कह सकता, क्योंकि उनको भक्त की लीला करनी है। इसलिए भगवान होते हुए भी वो अपने को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया है, कभी जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने षड्भुज रूप का दर्शन दिया, जिस षड्भुज में कृष्ण राम और चैतन्य महाप्रभु ये तीनों रूप एक साथ दिखाए थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और कभी कभी अपने नृसिंह रूप बरार रूप विष्णु रूप इस प्रकार कई रूपों का प्रदर्शन अपने भक्तों को किया है, अंतरंग भक्तों, किंतु सबके सामने उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के आने का जो प्रसंग है ये शास्त्रों में वर्णित है, किंतु लोगों को इसके संबंध में पता नहीं। तो जैसे विद्वान व्यक्तिगण जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उनको तो ये पता होना चाहिए, किंतु उनको ये पता क्यों नहीं है? क्यों पता नहीं चला कि भगवान ऐसे आने वाले हैं या आए हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले माया देवी ने सबकी बुद्धि को आसन्न कर रखा, जिससे कि लोग इन तत्वों को या इन संकेतों को नहीं समझ सकते या उसका अलग अर्थ करते। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान के पश्चात ही इनका अर्थ स्पष्ट हुआ, क्योंकि महादेवी ने अपने आवरण को हटा लिया। तो शास्त्र में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार हर कलियुग में नहीं होता है, या भगवान श्री कृष्ण का अवतार हर द्वापर युग में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के अन्य अवतार अन्य युगों में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 दिन कितना है आप लोग अगर हिसाब लगा सकते हैं तो करिए, हम बता रहे हैं कि जैसे 4 युग ये कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्ष कलियुग की अवधि, और कलियुग की अवधि के 2 गुना द्वापर युग की अवधि है समय, और कलियुग की अवधि के 3 गुना त्रेतायुग का समय, कलयुग की अवधि के 4 गुना सत्ययुग का समय। इस प्रकार इन 4 युगों को मिलाने से ये 43,00,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य वर्ष माना जाता है, दिव्य युग माना जाता है। तो इस प्रकार 1,000 दिव्य युग होने से ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, 1 दिन अर्थात 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 12 घंटे 1,000 दिव्य युग, अर्थात ब्रह्मा जी के 24 घंटे 1 दिन और 1 रात 2,000 दिव्य युग। आप कैलकुलेशन करिए कितना है ब्रह्मा जी का समय, 1 दिन का समय। तो ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु शासन करते हैं, 14 मन्वंतर होता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि जब सप्तम मन्वंतर आता है तो सप्तम मन्वंतर में वैवस्वत मन्वंतर जिसको कहा जाता है, तो वैवस्वत मन्वंतर में जब 28वां दिव्य युग आता है तो उसी दिव्य युग में जो द्वापर युग आता है उसी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, और जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं ठीक उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। तो हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि अभी अभी जो द्वापर गया है, क्योंकि ये वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, ये सप्तम मन्वंतर अब चल रहा है ब्रह्मा जी का, जो सप्तम मन्वंतर 1 दिन का, तो इसमें 28वां दिव्य युग अभी चल रहा है, 28वें दिव्य युग का ये द्वापर अभी चला गया, भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे इस द्वापर में, और ठीक उसके बाद ये जो कलियुग आया है इसमें से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। इसलिए इस कलियुग के लोगों को सौभाग्यशाली कहा जाता है, और इस कलि को धन्य कलि भी कहा गया है, क्योंकि जो लोग इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के प्रवर्तित मार्ग पर चलते हुए इस हरिनाम संकीर्तन का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान है। और इस कलयुग का जो स्वर्ण युग है ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार से 10,000 वर्ष तक है। अब चैतन्य महाप्रभु के अवतार का
500 वर्ष से कुछ अधिक काल व्यतीत हो गया है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में अवतरित हुए और इसमें 500 वर्ष से कुछ अधिक काल व्यतीत हो गया है। तो कलयुग में ये 10,000 वर्ष तक ये धर्म कर्म कुछ रहेगा, 10,000 वर्ष के बाद कोई धर्म का नाम नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा और घोर कली परिव्याप्त हो जाएगा सारे संसार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी पे अच्छे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मरो नाम। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि समग्र पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम है सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार हो, और उस भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनंद संघ के संस्थापक आचार्य श्रील एस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ये विदेश गए थे और समग्र विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। आज समग्र विश्व में यदि कोई कृष्ण को जानता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को जानता है, अथवा ये हरे कृष्ण महामंत्र को जानता है, गीता भागवत को जानता है, तो इसका सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी महाराज को जाता है। उन्हीं के अथक प्रयास से आज समग्र विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ है। सारे विश्व के लोग अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। भारत के लोगों को कभी हम कहते हैं कि आप लोग मांस मछली छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, लोग लोग के सामने ये आदत पड़ गई है, नहीं होता। भारत के लोग भी, हमारी ये सभ्यता है, हमारा ये धर्म सनातन धर्म, कि हमारे लोग इसको पालन करने में अक्षम है, किंतु विदेश में लोग इतनी संख्या में इस पापाचार को त्याग करके इस धर्म वैष्णव धर्म में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य हुई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, लीला समान ये अपार आकर्षणीय और मनोहरी लीला है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो कृष्ण लीला में कृष्ण के जितने भी परिकर वर्ग थे, पार्षद वर्ग थे, वे सब चैतन्य लीला में भी अवतरित हुए। तो भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उनके भ्राता बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। इसलिए हम गौरनिताय श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं। वस्तुतः गौरनिताय का नाम लेने का अर्थ है कृष्ण बलराम का नाम लेना, क्योंकि गौरनिताय अर्थात नित्यानंद प्रभु एवं गौरांग महाप्रभु दोनों कृष्ण और बलराम है। और श्रीमती राधारानी श्री गदाधर पंडित के रूप में आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को अंगीकार किए हुए आए थे और राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाह रहे थे, इसलिए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए और उनको इस भाव के आस्वादन में उन्होंने सहायता की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते थे गदाधर पंडित, और उनके साथ और दो अंतरंग भक्त थे, ललिता और विशाखा। तो ये ललिता और विशाखा राधा रानी के अंतरंग सहचरियां। तो चैतन्य लीला में जब भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हुए, तो श्री ललिता जी और विशाखा जी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के रूप में अवतरित हुए। जब चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण प्रेम का विकार उत्पन्न होता था तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर श्रीमद् भागवत श्लोक का पाठ करके उनकी उनके भावों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य लीला में भगवान कृष्ण ने राधा रानी के भाव को भाव का आस्वादन किया। यही वस्तुतः उनके अवतार का अंतरंग कारण था। इसके साथ साथ युग धर्म प्रवर्तन
और भक्ति शिक्षा और व्रत प्रेम प्रदान ये आनुषंगिक कारण तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष के लिए इस धराधाम पर उन्होंने लीलाएं की तो 24 वर्ष में वो संन्यास ग्रहण किए थे और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जगन्नाथपुरी धाम में वो रह रहे थे और जगन्नाथपुरी से जब वो दक्षिण भारत भ्रमण में आए थे तो उस समय से चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र भी आए थे। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए थे, वहां विठल जी का दर्शन किया था और वहीं पर संत तुकाराम जी से उनका मिलन हुआ। संत तुकाराम जी भी वहीं पर चैतन्य महाप्रभु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया था। संत तुकाराम तो महाराष्ट्र में भगवान के नाम संकीर्तन का प्रचार इस प्रकार प्रारंभ हुआ। और ऐसे भी महाराष्ट्र की जो भूमि है ये भक्ति की भूमि है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा यहाँ पर है और चैतन्य महाप्रभु ने समग्र दक्षिण भारत और उत्तर भारत समग्र भारत में उन्होंने भ्रमण किया और सबको कृष्ण प्रेम में उद्बुद्ध किया। तो वही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो उस समय तो कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे और जगन्नाथपुरी में इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे क्योंकि वहां जगन्नाथ जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है। यद्यपि जगन्नाथ जी का जो रूप है वो कुछ अलग सा लगते हैं किंतु भगवान श्री कृष्ण का ये महाभाव प्रकाश रूप है जगन्नाथ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उस समय द्वारका में रहते हुए भी वो तो वृंदावन वासियों को भूल नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा ब्रजवासियों का स्मरण और विशेष रूप से गोपियां और श्रीमती राधारानी का स्मरण भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा करते थे द्वारका में रहते थे। तो द्वारका की रानियां रुक्मिणी आदि रानियां ये बहुत आश्चर्यचकित होती थी कि ये भगवान को क्या हो गया है। हम लोग उनकी इतने प्रेम के साथ भगवान की सेवा करते हैं और भगवान फिर भी इन ब्रजवासियों को भूल नहीं पाते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण स्वप्न देखते हैं रात और स्वप्न में कभी कभी राधे राधे बोलते रहते हैं। तो ये रानियां सोचती हैं कि भगवान को क्या हो गया, भगवान का क्या सचमुच हमारे प्रति प्रेम नहीं है या हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है जिसके कारण भगवान उन ब्रजवासियों की और विशेष रूप से गोपियों की और राधारानी का स्मरण कर रहे हैं स्वप्न में भी। तो इस प्रकार ये लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इन गोपियों का कैसा प्रेम था कृष्ण के प्रति और विशेष रूप से ये राधारानी का कैसा प्रेम है। इसको जानने के लिए द्वारका की महिषियां रानियां सदा सर्वदा उत्कंठित रहते तो किसी को ये किससे इसके संबंध में ये ज्ञान प्राप्त करें कि ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा था। तो रानियां सोच रही थी कि जब कृष्ण और बलराम ब्रज में लीला कर रहे थे तो उस समय रोहिणी माता ब्रज में रहती थी नंद महाराज के घर पर क्योंकि वसुदेव जी ने रोहिणी जी को ब्रज में भेज दिया था कंस के डर से। तो रोहिणी देवी जो बलराम की माता है वो ब्रज में रह रही थी और कृष्ण और बलराम की लीलाओं के संबंध में अवगत वो जानती थी। तो रानियों ने ये निर्णय किया कि रोहिणी माता से पूछा जाए कि ब्रज कृष्ण बलराम की जो लीलाएं हैं ब्रज में और विशेष रूप से कृष्ण की जो लीला है और गोपियों का उनके प्रति कैसा प्रेम था इसके संबंध में वही बता सकती। तो रानियों ने एक दिन माता रोहिणी से निवेदन किया कि माता आप कृपा करके हम लोगों को बताइए कि ब्रजवासियों का और विशेष रूप से गोपियों का और राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा था। तो रोहिणी माता ने कहा कि देखो ये कृष्ण तो सदा सर्वदा ये ब्रज के बारे में सोचते सोचते कभी रोता है, कभी भाव विवल हो जाता है और कभी स्वप्न भी देखता है। तो हम यदि उस व्रत की लीला के संबंध में हम तुम लोगों को बताएंगे और कृष्ण बीच में आ जाएगा और सुनेगा वो फिर भाव विवल हो जाएगा और उसको क्या होगा मुझे पता नहीं। इसलिए तुम लोग एक काम करो, ऐसा स्थान का चयन करो जहां कृष्ण और बलराम अंदर आ नहीं सकते, हम वहीं पर तुम लोगों को ये कथा सुनाएं। तो रानियों ने सोचा कि ये रानी अंतपुर जो है ये तो कृष्ण के लिए भी अगम्य नहीं है, कृष्ण वहां भी जा सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। तो रानियों ने सोचा कि किसी को द्वारपाल के रूप में रखा जाए, जब कृष्ण आए तो हम लोगों को बता दें तो हम कथा बंद कर दें। तो सब लोगों ने सोचा कि किसी द्वारपाल को अगर रखे हैं तो द्वारपाल तो कृष्ण को रोक नहीं सकता, कृष्ण द्वारका के अधीश्वर है, उनको कौन रोक सकता। तो सब लोगों ने सोचा ये सुभद्रा जो है ये कृष्ण की बहन है और बहन भाई को रोक सकती है, इसे कोई खड़ा कर दिया जाए। तो सब लोगों ने सुभद्रा जी से कहा कि आप ही खड़ा रहे द्वारपाल और कृष्ण भगवान यदि आ जाते हैं उनको रोक कर रखिए, उनको अंदर मत आने दीजिए। तो सुभद्रा जी राजी हो गए, द्वार पर खड़ी हैं सुभद्रा जी, हाथ फैलाकर द्वार को बंद करके अवरुद्ध करके, और भीतर रोहिणी देवी रानियों को कृष्ण की लीलाओं के संबंध में सुना रही है ब्रज लीलाओं के। तो ब्रज लीलाओं के संबंध में भीतर जब कथा हो रही थी तो सुभद्रा जी यहां खड़ी हैं द्वार पर, लेकिन उनके कान भीतर तो उन्हें कृष्ण की कथा सुन रही है, बाल लीला की कथा है, ब्रज लीला की कथा। तो उनको ध्यान नहीं है कब कृष्ण और बलराम आकर पहुंच गए। तो कृष्ण बलराम जब आते हैं देखते हैं कि सुभद्रा हाथ फैलाकर द्वार अवरुद्ध करके खड़ी है, तो वो आश्चर्यचकित होएगी क्या बात है, आज सुभद्रा ऐसी क्यों खड़ी है। तो ये लोग आकर चुपचाप सुभद्रा के दोनों तरफ खड़े हो गए और सुभद्रा को पता ही नहीं चला। और जब खड़े होकर सुनते हैं कि भीतर उनकी लीला की कथा चल रही है, तो कृष्ण और बलराम दोनों अपने व्रज लीला की कथा सुनते हुए इतने भाव विभोर हो गए कि उनके उनकी जो आंखें हैं वो भाव विवल अवस्था में जो भाव विकार उत्पन्न हुए उनके शरीर में, तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंखों में पलके और नहीं पड़े, आंख बड़ी बड़ी विस्तारित हो गई और हस्तपद ये सब संकुचित हो गए कुर्म रूप के समान, सब अंदर घुस गए हाथ और पैर। इस प्रकार की अवस्था में कृष्ण और बलराम और सुभद्रा बीच में तीनों खड़े हैं भाव विहल अवस्था में, व्रत प्रेम व्रत भाव की कथा व्रत लीला की कथा सुनते हुए स्वयं भगवान भी भाव विहल हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि स्मारण स्मारण स्वगृह चरितम दारू रूप मुरारी, स्वयं भगवान मुरारी कृष्ण ये दारूभूत हो गए गृह चरित का स्मरण करते हुए, व्रत लीला का स्मरण करते हुए, और वही दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए श्री जगन्नाथ परिधाम। तो उस समय जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा इस प्रकार खड़े थे तो नारद मुनि वहां पर आकर उपस्थित हुए और नारद मुनि ने आज भगवान के अपरूप दर्शन कर रहे नारद मुनि। उन्होंने सोचा कि भगवान के इस रूप का दर्शन हमने कभी नहीं किया, या भगवान ने इस प्रकार का रूप कभी धारण नहीं किया, आज ये अपरूप रूप कैसे धारण किए हुए हैं। तो नारद मुनि आवेग पूर्ण ढंग से भगवान के नाम कीर्तन करने लगे, आनंद में विह्वल हो गए, और जब वो नाम कीर्तन करने लगे तो कृष्ण बलराम का बाह्य ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने देखा कि नारद जी सामने खड़े हैं। तो नारद जी को देखकर वो लोग स्वयं अपने रूप में आ गए, उनका भाव विकार समाप्त हो गया। तो नारद जी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु आप इसी रूप में सारे जगत का दर्शन दीजिए, इसी रूप का दर्शन किसी ने नहीं किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को वरदान प्रदान किया था कि हम इसी रूप में तीनों जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हो दारु ब्रह्म के रूप में। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के आयु के प्रथम पदार्ध में अर्थात प्रथम 50 वर्ष में भगवान कृष्ण नीलाद्री अर्थात नील पर्वत जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, वो पर्वत के ऊपर है, नील पर्वत नील कंदर कहा जाता है और इसलिए उसका नाम है नीलाचल नीलाचल। नील पर्वत के ऊपर स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के प्रथम 50 वर्ष नील माधव के रूप में प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी के द्वितीय 50 वर्ष में वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। तो अब ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है, ब्रह्मा जी का प्रथम 50 वर्ष व्यतीत हो चुका है और द्वितीय जो 50 वर्ष चल रहा है उसमें भगवान कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए हैं नीलाचल धाम। तो भगवान कृष्ण का ये जो जगन्नाथ रूप है, ये रूप भगवान कृष्ण जब राधा रानी का विरह अनुभव कर रहे थे तो इस प्रकार के रूप में प्रकट हुए। इसलिए जगन्नाथ जी का जो रूप है कृष्ण का ये महाभाव प्रकाश रूप है, अर्थात जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है जो राधा रानी के विरह अनुभव कर रहे हैं, राधा विरह विदुर जगन्नाथ। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है किंतु राधा रानी के भाव में कृष्ण का विरह अनुभव कर रहा है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में वस्तुतः राधा कृष्ण का ही मिलन हुआ है, स्वयं कृष्ण जो कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और कृष्ण राधा रानी का विरह अनुभव कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निवास किया और वहीं से जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम आना चाहते थे तो एक बार तो वो बंगाल होते हुए आ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए लाखों लोग एकत्रित हो गए और उनके पीछे पीछे चलते थे लाखों लोग चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप से आकृष्ट होकर, उनके नाम संकीर्तन से आकृष्ट होकर लाखों लोग उनके साथ चलते थे। तो जब श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ उनकी भेंट हुई तो श्रील सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा कि इतने सारे लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाना ये ठीक नहीं है। तो इस बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु वहीं से वापस लौट आए, वो आगे वृंदावन नहीं गए। अब जब पूरी लौट आए दूसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम कल के सत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा लीला की चर्चा करेंगे ये कल सुबह के सत्र में। और आज शाम के सत्र में हम कल जहां पर हमारी कथा रुकी हुई थी वहां से हम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। यह कार्यक्रम समाप्त होने से पहले हम 5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित, और ये कली संतरण उपनिषद में जिस महामंत्र का वर्णन भी आता है उसी को चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तन किया कलियुग के युग धर्म के रूप में। तो उसी महामंत्र का हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे और आप लोग सब हमारे साथ मिलकर इस कीर्तन में अंशग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा